بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتاگن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی پھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جسے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج بدھوار ہے، دیما کی 8، جمادی لولا کی 24 اور دسمبر کی 29 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت آپ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی پر ایک کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شروع میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے ہتھیاروں کو قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کریں گے۔ عراقی پرتیرودھ کرتاؤں نے کہا ہے کہ امریکی سینکوں کو دیش سے نکال کر ہی ہم دم لیں گے۔ امریکی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے وارتا کی ہے۔ بھارت میں مہاتما گاندھی کو گالیاں دینے والے کٹر ہندو نیتا نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور اختر عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے ہتھیاروں اور ہتیا کا آدیش دینے والوں کو قانون کے کٹگھرے میں لائیں گے۔ ودیش منترالے نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہ امریکی راشٹرپتی کے سیدھے آدیش سے جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیا سرکاری آتنکواد کا کھلا ادھارن ہے، کہا کہ اسلامی گڑتنتر ایران ہتھیاروں اور ہتیا کا آدیش دینے والوں کو قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کرے گا۔ ودیش منترالے نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کے اوسر پر اپنے ٹویٹ میں ویڈیو پوسٹ کیا، جس میں امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیا کا آدیش دینے کا کریڈٹ لے کر اپنی بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سوموار کو ودیش منترالے کے پروکتا سعید خطیب زادے نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیا کے بعد ہونے والی کارروائیوں کا بیورا دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی آتنکواد سے سنگھرش کے نائک تھے، اور اس ویکتی پر آتنکوادی حملہ جو آتنکواد سے سنگھرش میں فرنٹ لائن پر ہو، آتنکواد سے سنگھرش کا دعویٰ کرنے والوں کے دوہرے ماپدنڈ اور ان کے جھوٹے دعووں کی پول کھولتا ہے۔
ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی 2022 کی شروعات میں ماسکو کی یاترا کریں گے، جہاں وہ دونوں دیشوں کے بیچ رڑنیتک ساجھیداری کو بڑھاوا دینے جیسے مدوں پر ورشٹھ روسی ادھیکاریوں کے ساتھ وچار ومرش کریں گے۔ منگلوار کو ساپتاہک پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے ایرانی سرکار کے پروکتا علی بہادری زہرمین शवा की जगह अली बहादुरी जारूमी ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपने ईरानी समकक्ष को मॉस्को की यात्रा का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रईसी संभवतः नए साल की शुरुआत में दुनिया विशेष रूप से क्षेत्रीय देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की रणनीति के तहत मॉस्को का दौरा करेंगे। जहरूमी का कहना था कि तेहरान मॉस्को के बीच सहयोग में विस्तार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली मुलाकात का मुख्य मुद्दे रहेगा।
ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने दुश्मन को ईरानी सशस्त्र बलों की ताकत का इम्तिहान न लेने की सलाह देते हुए चेतावनी दी है कि दुश्मन हमसे टकराने का खर्च वहन नहीं कर सकेगा। मंगलवार को खातमुल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुश्मन ने छोटी सी भी गलती की तो उसे सही समय पर स्थान पर मुंह तोड़ जवाब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि उस पर हमारी निगाहें हैं, हम तैयार हैं और निश्चित रूप से हम उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। मेजर जनरल राशिद ने उम्मीद जताई है कि दुश्मन हमारी इच्छा और शक्ति का इम्तिहान लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो चौतरफा लड़ाई की लागत वहन नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान की शक्ति पर विश्वास से निश्चित रूप से उसे कम कीमत चुकानी पड़ेगी।
अमरीकी विदेश मंत्रालय ने वियना वार्ता के 8वें चरण की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है कि वार्ता अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडवर्ड नेट प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पर दबाव डालने वाले हथकंडे प्रयोग करते हुए कहा कि ईरान वार्ता में विलंब का हथकंडा प्रयोग कर रहा है और साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसराइल के परमाणु हथियारों की ओर संकेत किए बिना ही अतीत की तरह एक बार फिर ईरान के विरुद्ध निराधार आरोप लगाते हुए इस बार स्वीकार किया कि वियना वार्ता के 8वें दौर में कुछ प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके साथ ये भी कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये प्रगति किस हद तक है और इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। ज्ञात रहे कि प्रतिबंधों की समाप्ति के बारे में वार्ता का 8वां दौर ईरान के सीनियर वार्ताकार अली बाकरी गनी और यूरोपीय संघ के विदेश नीति के उप प्रमुख एनरिका मोरा की अध्यक्षता में सोमवार को शुरू हुए।
इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों की समन्वयकर्ता कमेटी ने कहा है कि अमरीकी अधिकारी इराक से सैनिकों को निकालने में गंभीर नहीं है, किंतु प्रतिरोधकर्ता गुट विदेशी सैनिकों को देश से निकालकर ही दम लेंगे। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बयान जारी करके कहा है कि हर आने वाले दिन के साथ हम पर यह सिद्ध हो रहा है कि अमरीका इराकी जनता और इराकी संसद की राय का सम्मान नहीं कर रहा है और वो इराक से सैनिकों को निकालने में गंभीर नहीं है। इराक के प्रतिरोधकर्ता मोर्चे के बयान में आया है कि अमरीका अपने सैनिकों को निकालकर इराकी जनता और संसद के फैसले का सम्मान करते हुए इस देश की अखंडता को स्वीकार करे।
हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास की इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स से मुलाकात की कड़ी निंदा की है। बुधवार को हमास के प्रवक्ता आजम कासमी ने अपने ट्वीट संदेश में बेनी गेट्स से महमूद अब्बास की मुलाकात का इंतफाजा की पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया है। कासम का कहना था कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख के इस कदम से फिलिस्तीनी गुटों के बीच की खाई अधिक चौड़ी होगी और स्थिति पहले से भी अधिक जटिल हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में जो लोग इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं ये कदम उन्हें प्रोत्साहित और फिलिस्तीनियों के पक्ष को कमजोर करेगा। स्थिति में कि जब वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लगातार ज़ायनी सैनिकों और अवैध बस्तियों में बसने वाले ज़ायनियों के हमलों का विरोध कर रहे हैं, महमूद अब्बास ने इसराइल के युद्ध मंत्री से मुलाकात की है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नागरिक मामलों के मंत्री हुसैन अल शेख ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये खुलासा किया है कि मंगलवार की शाम महमूद अब्बास ने इसराइली मंत्री के साथ मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि 10 साल बाद महमूद अब्बास ने किसी इसराइली अधिकारी के आवास में कदम रखा है। दोनों के बीच ये मुलाकात 2.5 घंटे से भी ज्यादा चली, जिसमें दोनों ने सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका की एक वेबसाइट का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के लिए सऊदी अरब और इसराइल के बीच गुप्त वार्ता हुई है। रक्षा मामलों की विशेष अमरीकी वेबसाइट ने لکھا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے نردیش کے بعد سعودی عرب ایئر ڈیفینس سسٹم کی خریداری کے لیے اسرائیل کے ساتھ گپت وارتہ کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار سینے معاملوں کی ویب سائٹ نے انتراشٹری کوٹنیکوں کے حوالے سے بتایا کہ سعودی سرکار نے اسرائیل کے ساتھ گپت ڈھنگ سے یہ وارتہ انجام دی ہے۔ امریکی ویب سائٹ لکھتی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اسرائیلی ایئر ڈیفینس سسٹم وشیش کر ڈرون ویمانوں کا مقابلہ کرنے والے سسٹم کی خریداری میں بہت دلچسپی دکھائی ہے اور ریاض کا ایک اچ استریہ شمنڈل سعودی عرب کی ہوائی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے فلاخن داؤد نامک ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کا پریاس کر رہا ہے۔
سنیوکت راشٹر سنگھ نے سعودی گٹھبندھن کے حملوں میں یمنی ناگرکوں کے مارے جانے کی بات سویکار کی ہے۔ یمن کی راجدھانی سنا کے آواسیہ کھیتروں پر سعودی گٹھبندھن کی بھیشن بمباری کے بعد یمن کے معاملے میں سنیوکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت نے ان حملوں میں عام ناگرکوں کے مارے جانے کی بات سویکار کی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار یمن کے معاملے میں سنیوکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت ہینس گراؤنڈ برگ نے منگلوار کو اپنے بیان میں یمن کی دھرتی پر حالیہ سینے تناؤ کی نندا کرتے ہوئے سنگھرشرت پکشوں سے جھڑپوں میں کمی کی مانگ کی ہے۔
چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں مہاتما گاندھی پر اپمان جنک ٹپڑی کرنے والے ہندو دھارمک نیتا کالی چرن مہاراج کو اپنے بیان پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ رائے پور کے راون بھاٹا میدان میں بیتے 26 دسمبر کو دو دیوسیے دھرم سنسد کے انتم دن کالی چرن مہاراج نے اپنے بھاشن کے دوران بھارت کے راشٹرپتا کے خلاف اپمان جنک ٹپڑی کی تھی اور ان کے ہتھیارے ناتھورام گوڈسے کی پرشنسا کی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے دھرم کی رکشا کے لیے سرکار کے مکھیا کے روپ میں ایک کٹر ہندو وادی نیتا کو چننے کی اپیل بھی کی تھی۔ رائے پور میں اپنے خلاف معاملہ درج ہونے کے بعد کالی چرن نے ایک ویڈیو جاری کر اپنی ٹپڑیوں کو صحیح ٹھہرایا۔ انہوں نے ویڈیو سندیش میں کہا کہ گاندھی کے بارے میں اپشبد بولنے کے لیے میرے خلاف پراتھمکی درج ہوئی ہے اور مجھے اس پر کوئی پشتتاپ نہیں ہے۔
بہار میں ہندوستانی عوام مورچہ ہم اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے بیچ لگاتار ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے نتیش کمار کے گٹھ بندھن سرکار پر خطرے کے بادل منڈرانے لگے ہیں۔ ہم کے پرمکھ جیتن رام مانجھی کی برہمنوں پر وواد ٹپنی کے ستاداری این ڈی اے گٹھ بندھن میں شامل دلوں کے بیچ تناؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم کے پروکتا نے نتیش سرکار کو گرانے کی دھمکی تک دے دی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم لے کر اپستھت ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کی برسی کی تیاریاں، محمود عباس کی زائونی رکشا منتری سے بھیٹ اور بھارت میں ڈاکٹروں کی ہڑتال جیسے وشیوں کو کاریکرم میں ہم شامل کریں گے۔ دوستوں، کیول ایران ہی نہیں، وشو کے کئی دیشوں میں شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے آیوجن کی تیاریاں تیزی سے چل رہی ہیں۔ وستار سے بتا رہے ہیں احمد عباس۔
شہید قاسم سلیمانی، ان کے ساتھی ابو مہدی المہندس، اسی طرح ان کے ساتھ شہید ہونے والے انیہ 8 شہیدوں کی دوسری برسی نزدیک آنے کے ساتھ ہی دنیا کے انیہ دیشوں کی طرح لبنان میں بھی کاریکرموں کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور الگ الگ طرح کے کاریکرم آیوجت کیے جانے کی یوجنا ہے۔
شہید قاسم سلیمانی ہو،
स्थानीय युवा का कहना है कि शहीद कासिम सुलेमानी अमर आदर्श हैं। लिबनानी उन्हें श्रद्धांजलि देकर ये संदेश दे रहे हैं कि उनके रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।
नहनु कासिम।
एक अन्य युवा कहता है कि हम सब कासिम हैं। ये बात इलाके के लोगों के दिल की हालत बयान करने के लिए बेहतरीन बात है। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर, बैरूत एयरपोर्ट के रास्ते में बड़े बड़े साइन बोर्ड जिनमें जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरें और उनसे संबंधित बातें प्रदर्शित की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर इसराइलियों के गहरे आक्रोश का कारण बनी है। इसराइलियों को इस बात पर बहुत नाराजगी है कि शहीद कासिम सुलेमानी को पूरे इलाके में याद किया जा रहा है।
शहीद कासिम।
लिबनानी बुजुर्ग नागरिक का कहना है कि शहीद कासिम सुलेमानी हमेशा लोगों का ध्यान फिलिस्तीन के मुद्दे की ओर केंद्रित कराते थे और याद दिलाते थे कि इसराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखना है। आज भी उनकी याद मनाई जाती है तो साथ ही बैतुल मुकद्दस की आजादी का संकल्प दोहराया जाता है और इससे इसराइलियों में भय व्याप्त है। इस साल शहीद कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के अवसर पर लेबनान और इलाके के अरब देशों में ये नारा पूरी तरह फैल चुका है कि हम कासिम हैं। लोग शहीद की बरसी का इंतजार कर रहे हैं। लेबनानियों का कहना है कि ये नारा दरअसल मैदान में शहीद कासिम सुलेमानी के जज्बे और इरादे के पूरी तरह मौजूद और सक्रिय रहने की निशानी है। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट।
फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख ने ज़ायूनी शासन के रक्षा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। हमास ने इसे फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोपने जैसा काम बताया है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट ने मंगलवार को ज़ायूनी रक्षा मंत्री बेनी गेंट से फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुखिया महमूद अब्बास की मुलाकात की खबर दी है। ये मुलाकात रोश हाइन शहर में स्थित गेंट्स के निजी आवास पर हुई, जिसमें सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसराइल में नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से अब्बास की गेंट्स के साथ ये दूसरी मुलाकात है। दोनों के बीच पहली मुलाकात अगस्त में रामल्ला में हुई थी, जो पिछले एक दशक के दौरान इस स्तर पर पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात पर हमास की प्रक्रिया एक ध्यान योग्य बिंदु है। हमास ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अब्बास के इस कदम को फिलिस्तीनी आंदोलन की पीठ में छुरा घोपना बताया है। दूसरा बिंदु यह है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है कि जब इसराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए सबसे कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर रखी हैं, चाहे वो गजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी हो या अवैध अधिकृत इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनी। इसलिए इस मुलाकात को फिलिस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़कना माना जाएगा और इससे उन्हें एकजुट करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तीसरा बिंदु यह है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बल वास्तव में इसराइली रक्षा मंत्री से आदेश लेते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों और ज़ायोनी सैनिकों के बीच अधिक सहयोग का मुद्दा उठाया गया है। इससे फिलिस्तीनियों पर अधिक दबाव बनाया जा सकेगा और उनकी आवाज को आसानी से कुचला जा सकेगा। इस मुलाकात के बारे में चौथा बिंदु यह है कि हालिया घटनाक्रमों में गजा स्थित प्रतिरोधी गुटों और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के बीच एक खास एकता और एकजुटता देखी गई है। गजा स्थित फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों और इसराइल के बीच हालिया लड़ाई में वेस्ट बैंक, यहां तक कि 1967 से पहले कब्जा किए गए इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने खुलकर हमास को अपना मसीहा बताया और गजा के हक में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किए, क्योंकि ये लड़ाई मस्जिदुल अक्सा पर ज़ायोनियों की चढ़ाई के खिलाफ और बैतुल मुकद्दस में रहने वाले फिलिस्तीनियों के हक में शुरू हुई थी। इसने तेल अवीव की चिंताओं को बढ़ा दिया। यही वजह है कि इसराइली अधिकारियों ने फिलिस्तीनियों में फूट डाले रखने और उन्हें एकजुट नहीं होने देने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत में हड़ताली डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार उनके बारे में उदासीनता बरत रही है। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
भारत के अनेक क्षेत्रों में मेडिकल छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए देश भर में इस्तीफा देने की धमकी दी है। नीट पीजी परीक्षा की घोषणा के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50,000 छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया 24 से 29 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन सरकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नीट पास उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे रही है, जिसे कुछ छात्रों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत इस मामले की 6 जनवरी को आगे सुनवाई करने वाली है। दिल्ली में कई स्थानों पर मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने सड़कों पर धरना दिया, मार्च किया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान उनकी दिल्ली पुलिस से झड़प भी हुई। हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं ठप रहीं, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर हल करे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसी दिन शीर्ष अदालत कोई फैसला करेगी, जिसके बाद काउंसलिंग और भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उम्मीद जताई है कि समस्या का समाधान निकल आएगा। मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब देश में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ रहे हैं। भारत में 21 राज्यों में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले भी 781 तक पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे रोगियों की संख्या 238 हो गई है, जो सर्वाधिक है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत मेट्रो और बसों में यात्रियों के लिए केवल 50% सीटों का प्रावधान है और कई दूसरे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और रात का कर्फ्यू जारी है। विवाह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील कर रही हैं। भारत में कोरोना टीका लगाने की प्रक्रिया जारी है और अब तक 143 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। आज बुधवार है, इसलिए आप बुधवार से विशेष कार्यक्रम सुनेंगे आजकल। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम, जो है शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में।
दोस्तों, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जनरल कासिम सुलेमानी वो महान हस्ती थे जो प्रतिरोध के मार्ग में मुसलमानों के मध्य एकता के आदर्श में बदल गए। जनरल कासिम सुलेमानी न केवल ईरान बल्कि इराक, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत और पाकिस्तान सहित इस्लामी दुनिया के महानायक हैं। वो अत्याचार और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक हैं। उनका उद्देश्य महान ईश्वर की राह में जिहाद था। वो मजलूमों के सहारा थे। उनके अस्तित्व से अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को शक्ति मिलती है और उनका मनोबल बढ़ता है। यही नहीं, जहां उनके अस्तित्व से अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को ताकत मिलती है, वहीं दुश्मनों और अत्याचारियों की आंखों का वो कांटा बने हुए थे। वो अत्याचारियों के मुकाबले में प्रतिरोध और जिहाद को अल्लाह की इबादत समझते थे। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई उनके बारे में कहते हैं, शहीद जनरल कासिम सुलेमानी प्रतिरोध की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं और समस्त प्रतिरोधी व संघर्षकर्ता उनके खून का बदला लेने के इच्छुक हैं।
प्रतिरोध व संघर्ष एक धारणा है और बहुत से लोगों का मानना है कि इसराइल जैसे रक्त पिपासु से अपने अधिकारों को वापस लेने का एकमात्र मार्ग संघर्ष है, और संघर्ष के बिना अपने अधिकारों को वापस लेने की कामना करना उस स्वप्न की भांति है जो कभी भी साकार होने वाला नहीं है। इस्लामी गणतंत्र ईरान वो देश है जहां 42 साल पहले शाह की तानाशाही व अत्याचारी शाह की सरकार थी। शाह वो अत्याचारी तानाशाह था जिसे अमेरिका और ब्रिटेन का व्यापक समर्थन प्राप्त था, और इन्हीं शक्तियों के समर्थन से वो सत्ता में पहुंचा था, और हमेशा वो काम करता था जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को लाभ पहुंचे। वो सस्ते दामों पर तेल बेचता था और उससे होने वाली आमदनी को अपने ऐश्वर्य और भोग विलास पर खर्च करता और अमेरिका से हथियार खरीदता था। इस प्रकार से कि 42 साल पहले शाह क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन के हितों के सबसे बड़े रक्षक में परिवर्तित हो गया था।
दोस्तों, शाह और उसकी तानाशाही सरकार को जन समर्थन प्राप्त नहीं था। अगर शाह और उसकी सरकार को जन समर्थन प्राप्त होता तो वो ईरान में चुनाव करवाता और अमेरिका तथा ब्रिटेन भी उसका समर्थन करते, मगर अमेरिका, ब्रिटेन और खुद शाह को बहुत अच्छी तरह ज्ञात था कि उसे और उसकी सरकार को जन समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर वो चुनाव करवाता तो उसकी तानाशाही सरकार का अंत हो जाता, और जिस तरह से वो ईरानी जनता की संपत्ति का दोहन व शोषण कर रहा था, नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कभी भी ईरान में न तो चुनाव करवाए और न ही चुनाव करवाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसके चुनावों के नतीजों और उसके परिणामों का भलीभांति ज्ञान था। इसलिए उसने कभी भी चुनाव कराने की गलती नहीं की।
रोचक बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन पूरी दुनिया में स्वयं को डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का आदर्श समझते हैं और दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं। उन्होंने कभी भी ईरान में चुनाव कराने की बात नहीं की। यही नहीं, इन देशों ने न केवल ईरान में चुनाव कराने की बात नहीं की बल्कि ईरान में शाह की तानाशाही सरकार का व्यापक समर्थन किया। अमेरिका और ब्रिटेन, विशेषकर अमेरिका, शाह की तानाशाही सरकार के मूल समर्थक थे। उसने कभी भी ईरान में डेमोक्रेसी सरकार की स्थापना की बात नहीं की। यही नहीं, जब एक एक दिन में सैकड़ों ईरानियों को शाह की अत्याचारी सरकार शहीद व घायल करती थी, तब भी ये देश शाह की तानाशाही सरकार का न केवल व्यापक समर्थन करते थे बल्कि उन्होंने कभी भी ईरानी जनता पर किए जा रहे अत्याचारों की भर्त्सना तक नहीं की, क्योंकि इन देशों को अच्छी तरह ज्ञात था कि शाह की तानाशाही सरकार में वे जिस तरह से ईरानी जनता व राष्ट्र की संपत्ति लूट रहे हैं, उस तरह वे ईरान में लोकतांत्रिक सरकार के सत्ता में आ जाने पर लूट खसोट नहीं कर सकते। शाह की अत्याचारी सरकार के काल में अमेरिका और ब्रिटेन के क्रियाकलापों को देखकर इस बात का पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि डेमोक्रेसी के उनके दावे की वास्तविकता व सच्चाई क्या है।
अमेरिका और ब्रिटेन को न तो डेमोक्रेसी व लोकतंत्र से कोई प्रेम है और न ही तानाशाही सरकारों से बैर है। इन देशों को केवल अपने हितों से प्रेम है। इन देशों के हित जिस प्रकार की सरकारों से पूरे होते हैं, वे उसी के समर्थक होते हैं।
سعودی عرب، بحرین، جارڈن اور سنیکت عرب امارات جیسے دیشوں میں تاناشاہی سرکاروں کے پرتی ان کے سمرتھن اور آشیرواد کو اسی پریپریش میں دیکھا جا سکتا ہے۔
دوستو، بہرحال امریکہ سہیت وشو میں بہت سے ورچسووادی دیش ہیں جو نہ کیول تاناشاہی سرکاروں کا سمرتھن کرتے ہیں بلکہ انہی کے سمرتھن کی چھتر چھایا میں تاناشاہی سرکاریں جنتا اور جن آندولن کا دمن کرتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پرتیرودھ کے بنا اپنے ادھیکاروں کو پراپت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے شبدوں میں، خون دیے بنا نہ تو اپنے ادھیکاروں کو پراپت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تاناشاہی اور اتیاچاری سرکاروں کا انت کیا جا سکتا ہے۔ شاہ کی اتیاچاری سرکار کے خلاف ایرانی جنتا کے ساہسک و ایتیہاسک پرتیرودھ کو اسی پریپریکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔
ایرانی جنتا کے بلیدانوں کے پرینام میں نہ کیول شاہ کی اتیاچاری سرکار کا انت ہو گیا بلکہ ایرانی جنتا کا پرتیرودھ پرینا کا سروت بن گیا۔ ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا کہتے ہیں کہ ایرانی راشٹر نے اس دنیا میں بہت بڑا کام انجام دیا جس میں ورچسوادیوں کا آدھار زور زبردستی اور دوسروں کی سمپتی کی لوٹ کھسوٹ ہے، اور دنیا کے بہت سے کھیتروں کے کمزور راشٹر انہیں ورچسوادیوں کے دباؤ میں ہیں۔ ایرانی راشٹر نے ورچسوادی ویوستھا کو نکار دیا۔
سروچ نیتا کا ماننا ہے کہ ورچسوادی ویوستھا کے مقابلے میں ڈٹ جانا پرتیرودھ کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دشمن کے کمزور بندوؤں کی پہچان کر کے ان پر حملہ کرنا بھی پرتیرودھ کا بھاگ ہے۔ اسی پرکار سروچ نیتا پرتیرودھ کو دھارمک اور مانویہ کاریہ سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پرتیرودھ کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک مہان ایشور کے وعدوں پر بھروسہ ہے۔ دوسرے شبدوں میں، مہان ایشور پر بھروسہ پرتیرودھ کا آدھار ہونا چاہیے، اور اس پر ایمان و بھروسے کے بنا واستوک پرتیرودھ سمبھو نہیں ہے۔ سروچ نیتا بل دیکر فرماتے ہیں کہ مہان ایشور نے پوتر قرآن میں بل دیکر کہا ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔
مہان ایشور نے پوتر قرآن میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ کسی سمے یا استھان سے وشیش نہیں ہے۔ جب بھی، جہاں بھی اور جو بھی مہان ایشور کے وعدے پر بھروسہ کر کے پرتیرودھ کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہی انسان ایشوری وعدوں پر سندیہ کرے گا جس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہوگی۔ ایک چیز کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہے کہ مہان ایشور پر بھروسہ کر کے پرتیرودھ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرتیرودھ کو کسی سمسیا کا سامنا نہیں ہوگا۔ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہان ایشور پر بھروسہ کر کے اس کی راہ میں جو جہاد کیا تھا اس میں انہیں پریشانیوں و سمسیاؤں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ جب مہان ایشور کے سروتم دوت کو اس کی راہ میں وبھن پرکار کی سمسیاؤں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو عام انسانوں کو مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس بات کا پکا و گھوڑ وشواس رکھنا چاہیے کہ اگر مہان ایشور کی مدد ہوگی تو وجے نشچت ہے۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا کہتے ہیں کہ پرتیرودھ میں دھیرے بہت ضروری ہے۔ ایشور کی راہ میں پرتیرودھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرتیرودھ آرمبھ کرتے ہی وجے مل جائے گی، بلکہ لکشیہ تک پہنچنے کے لیے دھیرے اور سنیم سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر پریجنوں کی جیونی کو سروتم آدرش کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا پوتر قرآن کی وبھن آیتیں ادھارن کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہان ایشور پیغمبری کی گھوشنا کے آرمبھ سے ویرودھیوں اور دشمنوں کے مقابلے میں پیغمبر اسلام سے دھیرے و سنیم سے کام لینے کی سفارش کرتا ہے۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا دھیرے و سنیم سے کام لینے کو بڑی وجے کی بھومکا مانتے ہیں، پر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ دھیرے و سنیم سے کام لینے اور مہان ایشور پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔
धैर्य व संयम से काम लेने और महान ईश्वर पर भरोसे का अगर ये मतलब होता कि इंसान कुछ न करे और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो पैगंबर इस्लाम को इतनी सारी कठिनाइयां न उठानी पड़ती।
सारांश है कि धैर्य व संयम से काम लेने का मतलब महान ईश्वर पर भरोसे के साथ डटकर मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए, और जो इंसान अल्लाह की राह में प्रतिरोध कर रहा है उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, उसका विधाता उसके साथ है। और जिस इंसान को ये विश्वास और यकीन होता है कि उसका सर्वशक्तिमान पालनहार उसके साथ है, तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरता, क्योंकि उसे इस बात का पूरा विश्वास होता है कि महान व सर्वसमर्थ ईश्वर के अलावा जितनी भी चीज़ें व शक्तियाँ हैं सब कुछ उसके मुकाबले में तुच्छ हैं। दूसरे शब्दों में जो भी चीज़ें हैं उनमें जो भी शक्ति है उन सब का स्रोत भी महान ईश्वर ही है।
इस प्रकार का इंसान इस बात का पक्का विश्वास रखता है कि जमीन व आसमान और जो कुछ भी उसमें है सबकी शक्ति महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की शक्ति के मुकाबले में मरे हुए मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अतः जो लोग दुनिया की चीज़ों पर घमंड करते हैं और ज़मीन पर अकड़ कर बात करते हैं और दूसरों से अहंकार भरा व्यवहार करते हैं, वास्तव में इस प्रकार के इंसान मूर्खता के चक्रव्यूह में फंसे हुए होते हैं और उनकी नज़रों पर अज्ञानता के पर्दे पड़े होते हैं। उन्हें बात याद नहीं होती कि उनके अस्तित्व की बुनियाद नजिस कतरा व पानी है और अंत नजिस लाश है, और पूरे जीवन वो मल मूत्र ढाते फिरते रहते हैं। जिस इंसान की नज़र इन चीज़ों पर होगी वो कभी भी घमंड नहीं करेगा।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता की दृष्टि में प्रतिरोध के लिए अंतर्दृष्टि, दुश्मन और उसकी शैलियों की पहचान बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास दुश्मन की शैलियों की पहचान न हो वो सही तरह से प्रतिरोध नहीं कर सकता है। अतः जो इंसान समाज या देश सही व सफल प्रतिरोध करना चाहते हैं उन्हें दुश्मन और उसकी शैलियों की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। और सर्वोच्च नेता कहते हैं कि जिस राष्ट्र के पास अंतर्दृष्टि और धैर्य होगा दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे आघात नहीं पहुंचा सकता, और इस प्रकार के राष्ट्र से मुकाबले में दुश्मन को कोई सफलता नहीं मिलेगी।
बहरहाल दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जनरल कासिम सुलेमानी वो महान हस्ती थे जिन्हें अमरीका के आतंकवादी सैनिकों ने शहीद कर दिया था। आतंकवाद और आतंकवादी गुटों के खिलाफ संघर्ष के महानायक जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करके अमेरिका ने आतंकवाद से मुकाबले में अपने दावे की वास्तविकता व सच्चाई को साबित कर दिया। यही नहीं, उसके इस कृत्य ने यह भी साबित कर दिया कि वो मानवाधिकारों की रक्षा में कितना सच्चा है। अमेरिका और वर्चस्ववादी शक्तियों को जान लेना चाहिए कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत से इस्लामी जगत को नुकसान जरूर पहुंचा है, परंतु जनरल कासिम सुलेमानी ने अपनी शहादत से पहले एक नहीं बल्कि हजारों कासिम सुलेमानी तैयार कर दिए हैं, और ईश्वर की राह में उनके प्रतिरोध और जिहाद का मार्ग न केवल रुका नहीं है बल्कि पूरे साहस के साथ जारी है और जारी रहेगा।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम सुप्रीम लीडर की नजर में क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा के कारणों पर चर्चा करेंगे। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, 9/11 की घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई घटनाएं घटी। राजनीतिक गलियारों में अमेरिका के पतन के विषय पर फिर चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञों और टीकाकारों ने अमेरिका के प्रतिस्पर्धियों की शक्ति में वृद्धि की ओर इशारा किया, जिनमें चीन सर्वोपरि है। उनका ये मानना है कि 9/11 की घटना के बाद अमेरिका के पतन की खाई और भी गहरी हो गई। अगले कुछ वर्षों में इस देश को दुनिया के संचालन में कई देशों की भागीदारी को स्वीकार करने को मानना होगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया पर अमेरिका की पकड़ कैसे कमजोर पड़ रही है और इसके क्या कारण हो सकते हैं।
पिछले 50 साल की घटनाओं पर नजर डालने से ये पता चलता है कि अमेरिका 1945 के बाद से धीरे धीरे शक्ति के केंद्र में परिवर्तित हो रहा था और इस देश ने आर्थिक और औद्योगिक आयाम से यूरोप को पीछे छोड़ दिया था और पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को विस्तृत किया था। उस समय दुनिया दो ब्लॉकों में विभाजित थी, एक कम्युनिस्टवाद और दूसरा पूंजीवाद, और उसके बाद अमेरिका ने उसके बाद के दशकों में जंगों का सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था। ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रही और उसके बाद 1970 और 1980 के वर्षों के बीच शक्ति के पतन के बारे में होने वाली बातों की हवा निकल गई और सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। यूं कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था या वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका एकमात्र खिलाड़ी था जो पूरी दुनिया में मनमानी कर रहा था।
1998 में ब्रेजिंस्की ने बल देकर कहा था कि आज दुनिया में अमेरिका की शक्ति और उसका फैलाव अद्वितीय है। इसके ठीक 3 साल के बाद ही हेनरी कैसेंजर ने कहा, दुनिया में अमेरिका की प्रगति अतीत के विशालकाय साम्राज्यों की तरह अद्वितीय है। ये सुनहरा काल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता और दो जंगों और आर्थिक संकट ने अमेरिका की हैसियत को प्रभावित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले नोआम चॉम्स्की अपनी किताब विघटित सरकारें नामक पुस्तक में अमरीकी सरकार की स्पष्ट नीतियों और उसके इतिहास पर रोशनी डालते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले अमेरिकी लेखक नोआम चॉम्स्की ने अपनी किताब में अमेरिकी व्यवस्था की बखिया उधेड़ी है और उसकी कमजोरियों को गिनवाया है, जिसमें जनता के फैसलों की कोई भूमिका नहीं होती है। नोआम चॉम्स्की का ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की एक पक्षीय नजर की वजह से बहुत सी समस्याएं जन्म ले रही हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इसमें दुनिया के छोटे से छोटे अल्पसंख्यकों के हितों को भी दृष्टिगत रखा जाए।
अमरीकी विचारक नोआम चॉम्स्की सचेत करते हैं कि इस काम की वजह से शांति, सुलह और समानता के लिए की जाने वाली सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। वे कहते हैं कि अमेरिका में न्यू कंजर्वेटिव ग्रुप का वजूद में आना एक अन्य समस्या थी, जो हमेशा से ही युद्धोन्माद और सैन्य हस्तक्षेप का पक्षधर रहा है। ये ग्रुप इतिहास का सबसे खतरनाक ग्रुप समझा जाता है। अमेरिकी विचारक चॉम्स्की पश्चिमी एशिया पर अमेरिका के हमलों और अमेरिका सहित पश्चिमी सरकारों की रणनीतियों तथा क्रियाकलापों की आलोचना करते हैं।
ब्रिटेन की इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका की गैर विवादित शक्ति सीरिया के खूनी जंग के मैदान से लेकर चीन के समुद्र तक विघटित हो रही है और दुनिया के शक्तिशाली देशों की ओर से उसको चुनौती दी जा रही है। सोवियत संघ के विघटन के काल से दोनों ही क्षेत्र शक्ति के परीक्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका की शक्ति अतीत की तुलना में कुछ प्रतिशत कम हुई है और वास्तव में यह उसके पतन की शुरुआत है।
ये परिवर्तन कारण बना है कि दुनिया में अमेरिका को अनेक क्षेत्रों में नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन दुनिया में दूसरी नई शक्तियों के उभरने और मैदान में नए खिलाड़ियों के आने का चिन्ह है। दुनिया के प्रसिद्ध टीकाकार और दर्शन शास्त्री तथा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा ने इकोनॉमिस्ट पत्रिका में अमेरिका की शक्ति के क्षीण होने की ओर इशारा करते हुए ये लिखा है कि निराश अफगानियों की हृदय विदारक तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया, जो काबुल की वाशिंगटन समर्थित सरकार के पतन के बाद देश से फरार होने का इरादा रखते थे। वे लिखते हैं कि दुनिया में अमेरिका का दो मुखी चेहरा पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। ये दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ।
अफगानिस्तान पर कब्जे को 20 साल गुजर जाने के बावजूद यह समझ में आता है कि अमेरिका अपने हित को न केवल आतंकवाद से संघर्ष में पाता है, बल्कि वह क्षेत्र में शांति, युद्ध की आग भड़कने और सैन्य हस्तक्षेप में ही देखता है। विशेषकर यह कि अफगानिस्तान दाइश के पलने बढ़ने तथा पड़ोसी देशों में पांव पसारने के लिए बेहतरीन जगह समझा जाता है। पश्चिमी एशिया में हालिया वर्षों में होने वाले परिवर्तन ने सिद्ध कर दिया कि एक तरफ अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप क्षेत्र में अमेरिका के अधिक प्रभाव का कारण बना और दूसरी ओर इसने क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंचाया और निरर्थक प्रतिस्पर्धा का नया बाजार गर्म कर दिया और मैदान में क्षेत्र के बाहर के खिलाड़ियों के बीच टकराव का नया मोर्चा खोल दिया।
इसी वास्तविकता की ओर इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि जिन हाथों से दाइश को बनाया गया और जिन हाथों से दाइश को सीरिया तथा इराक की जनता के खिलाफ अपराध और अत्याचार करने का साधन बनाया गया, वे ही हाथ आज क्षेत्र में पराजय के बाद दाइश के तत्वों को अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं और हालिया जनसंहार इसी योजना का शुरुआती बिंदु है।
वास्तव में आतंकवाद और अशांति वह समस्या है जिसे अमेरिका और उसके घटकों ने क्षेत्र की कुछ शैतानी और हमलावर शक्तियों की मदद से अस्तित्व प्रदान किया और यह स्थिति इस बात का कारण बनी कि पश्चिमी एशिया के देशों में शांति का विषय एक चिंता का कारण बन गया। अब क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा सारे क्षेत्र की सुरक्षा की परिधि में पेश की जा सकती है।
हालिया वर्षों में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र डालने से ये पता चलता है कि दुनिया की वर्चस्ववादी शक्तियां, उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है, आतंकवाद और चरमपंथ को इस्लाम को बर्बाद करने तथा इस्लाम तथा पश्चिम के बीच टकराव के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछले एक दशक के दौरान और क्षेत्र की सुरक्षा तथा ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों और पश्चिम की ओर से विभिन्न षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामूहिक शांति और सुरक्षा की कमी देखी जा रही है। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि शांति की स्थिरता के बहाने अमेरिका और बाहरी देशों की सैन्य उपस्थिति ने न केवल शांति और स्थिरता की स्थापना नहीं की, बल्कि अशांति को बढ़ाया है।
दोस्तों, फॉरेन अफेयर्स पत्रिका अमेरिका की शक्ति के बारे में अपने लेख में लिखती है कि अमेरिका के सुपर पावर बनने के सारे कारक आज बुरी तरह बिखर गए हैं और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अमेरिका की शक्ति बिखर रही है। इस बारे में प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका की शक्ति का पतन कठिन है, लेकिन दुनिया में होने वाले बदलाव की वजह से उसने अतीत की अपनी मजबूती खो दी है। यह वास्तविकता उस समय सामने आई जब जो बाइडन ने अपनी सत्ता के आरंभ में अमेरिका की शक्ति के पतन की बात स्वीकार करते हुए इसका ठीकरा ट्रंप की एकपक्षीय नीति के सिर फोड़ दिया।
जो बाइडन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका फर्स्ट के ट्रंप के नारे के विपरीत अमेरिका की एकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संचालन की अपनी भूमिका की ओर, जिसको उसने दृष्टिगत रखा है कि हम फिर से लौटेंगे, ये वही भूमिका थी जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अदा की, और ट्रंप ने अपनी सत्ता के 4 साल के दौरान उसकी अनदेखी कर दी।
वर्तमान समय में दुनिया में होने वाले नए परिवर्तन दुनिया में नई व्यवस्था के पैदा होने की निशानी है। अंतर्राष्ट्रीय टीकाकारों का कहना है कि यह परिवर्तन सुपर पावर या वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका की नीतियों के पतन का चिन्ह है, और इस वास्तविकता की निशानी है कि अमेरिका मजबूर होकर धीरे धीरे दुनिया के नेतृत्व से पीछे हट रहा है, जिसे वह वर्षों से अपने पास रखता था। वर्तमान समय में दुनिया में एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ रही है, बल्कि बहुपक्षीय व्यवस्था पैदा हो रही है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, और अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी के हत्यारों को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। इराकी प्रतिरोधकर्ताओं ने कहा है कि अमरीकी सैनिकों को देश से निकाल कर ही दम लेंगे। अमरीकी वेबसाइट का कहना है कि सऊदी अरब ने इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वार्ता की है, और भारत में महात्मा गांधी को गालियां देने वाले कट्टर हिंदू नेता ने कहा है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.